आज हम रूस और जापान के संबंधों पर चर्चा करेंगे। रूस और जापान का संबंध अपने में काफ़ी महत्व रखता है। चीन जापान युद्ध के 10 वर्षों बाद जापान की लड़ाई रूस से 1904 से 5 ईस्वी में हुई। रूस का चीन में बढ़ता हुआ प्रभाव जापानी साम्राज्यवाद के लिए एक खतरे की घंटी थी और एक चुनौती भी थी। रूस के बढ़ते हुए प्रभाव से इंग्लैंड भी भयभीत था, अतः जापान तथा इंग्लैंड रूस के बढ़ते हुए साम्राज्यवादी प्रभाव को रोकने के लिए कटिबद्ध हो गए। लेकिन अंतिम लड़ाई रूस और जापान में ही हुई। यह दो साम्राज्यवादी देशों के आपसी हितों की लड़ाई थी। मंचूरिया का प्रश्न। रूस और जापान में मनमुटाव का पहला कारण मंचूरिया का प्रश्न था। मंचूरिया कानूनी तथा आबादी की दृष्टि से चीनी साम्राज्य का एक अंग था, लेकिन रूस अपना उस पर प्रभाव जमाना चाहता था। रूस ने चीनी साम्राज्य की कमजोरी का फायदा उठाकर मंचूरिया पर अपना शिकंजा काफ़ी मजबूत कर लिया था। 1894 ईस्वी के बाद रूस ने चीन का पक्ष लिया और जापान पर प्रभाव डालकर लियाओ तुंग प्रदेश से जापानी अधिकार हटाने के लिए जापान को बाध्य किया। चीनी सरकार ने रूस को रेल लाइन बिछाने का भी अधिकार दिया। पोर्ट आर्थर तथा उसके समीप का प्रदेश रूस को अगले 25 वर्षों के लिए मिले। वहां पर उसे अपने जंगी जहाज को रखने के लिए भी इजाज़त मिली, जिसको ध्यान में रखकर रूसी सरकार ने अपनी किलेबंदी भी की। बॉक्सर विद्रोह के समय रूसी सरकार ने अपनी रेलवे लाइन की सुरक्षा के लिए सेना तैनात की। विद्रोह दब जाने के बाद भी सेना वापस नहीं बुलाई गई, जिससे अब रूस का मंचूरिया पर राजनीतिक दबदबा भी बढ़ गया। जापान कभी भी किसी भी तरह रूस का राजनीतिक प्रभाव चीन पर नहीं पड़ने देना चाहता था। रूस से कोरिया पर खतरा। रूस मंचूरिया पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। ठीक उसी प्रकार जापान कोरिया पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि कोरिया किसी भी तरह से रूसी साम्राज्यवाद का शिकार बने। लेकिन रूस का मंचूरिया पर बढ़ता हुआ प्रभाव कोरिया की सुरक्षा के लिए खतरनाक था। अतः जापान रूस का अधिकार मंचूरिया पर द्वेष की दृष्टि से देखता था। आइए अब हम देखें जापान के लिए मंचूरिया का महत्व। 1905 ईस्वी के पहले मंचूरिया से जापान को काफ़ी आर्थिक लाभ था। जापान वहां से सोयाबीन मंगाया करता तथा वहां के नेता जापानी औद्योगिक विकास के लिए मंचूरिया को अधिक महत्व देते थे। वे सोचते कि मंचूरिया की आबादी कम है और वहां की ज़मीन काफ़ी उपजाऊ है, अतः जापान के औद्योगिक विकास के लिए वहां से कच्चा माल तथा अन्न मंगाया जा सकता है। राजनीतिज्ञों के दिमाग में भी जापान की बढ़ती हुई आबादी को मंचूरिया में बसाना भी था। लेकिन जापान के इस उद्देश्य में रूस बाधा डाल रहा था, अतः मनमुटाव निश्चित हो गया। जापान की ईर्ष्या का कारण। वास्तव में जापान भूमि का विस्तार एशिया में करना चाहता था, क्योंकि इसने लियाओ तुंग को कभी अपने लिए मांगा था। लेकिन उसकी इस मांग का त्रिशक्तियों ने विरोध किया और उसे नामंजूर कर दिया। जापान के चाहने पर भी मंचूरिया उसे नहीं मिला। लेकिन रूस जब अपना प्रभाव मंचूरिया पर साम्राज्य के विस्तार के लिए बढ़ाने लगा तो स्वभावतः जापान ईर्ष्यालु हो गया। इतना ही नहीं, उसे अपनी सुरक्षा का भी भय होने लगा। इन्हीं सब कारणों के चलते जापान मंचूरिया में यथास्थिति की मांग करने लगा। 1902 ईस्वी की आंग्ल जापानी संधि। 1902 ईस्वी के पहले जापान के पास ऐसा कोई मित्र राष्ट्र नहीं था जो उसकी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वकालत कर सके। आंग्ल जापानी संधि से जापान की नैतिक शक्ति काफ़ी बढ़ गई थी। यह पहला अवसर था जब एशियाई शक्ति की संधि एक यूरोपीय देश से बराबरी के स्तर पर हुई। यह संधि रूस के प्रसार के खिलाफ की गई थी। इस समय रूस के साम्राज्यवाद का प्रसार बड़ी तेजी से हो रहा था। इससे जापान और इंग्लैंड दोनों भयभीत थे और वे मिलकर रूस का विरोध करना चाहते थे। इस संधि ने जापान की शक्ति काफ़ी बढ़ा दी और अब वह रूस को चुनौती देने के काबिल हो गया। रूस का मंचूरिया छोड़ने की अनिच्छा। आंग्ल जापानी संधि से रूस घबरा गया और वह 6-7 महीने के अंदर अपनी सारी सेना मंचूरिया से निकालने के लिए राजी हो गया। लेकिन सेना हटाने की उसकी वास्तविक इच्छा नहीं थी। उसने मंचूरिया के एक भाग से सेना हटाकर दूसरे भाग में केंद्रित करना शुरू कर दिया। इसके अलावा उसने मंचूरिया में नई नई सुविधाएं मांगनी शुरू की। उसकी मांग में एक मांग यह थी कि रूस के सिवा मंचूरिया से कोई अन्य विदेश राज आर्थिक लाभ नहीं उठा सकता है। रूस की इस मांग का अन्य देशों ने विरोध किया। विरोध के बावजूद 1903 ईस्वी में मास्को और पोर्ट आर्थर के बीच सीधी रेलवे लाइन बन गई और पूर्वी एशिया के लिए रूसी वायसराय की नियुक्ति की गई, जिसका असल उद्देश्य मंचूरिया को रूस का एक प्रांत बनाना था। इससे जापान की काफ़ी क्रोध हुआ और वह युद्ध की तैयारी करने लगा। कोरिया का प्रश्न। चीन जापान युद्ध के समय कोरिया पर जापान का प्रभुत्व कायम था, लेकिन जापान का बढ़ता हुआ प्रभाव कोरिया के राजा और रानी को अच्छा नहीं लगता था। कोरिया का राजा जापानियों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना चाहता था, अतः जापानियों ने आधी रात में राजमहल पर आक्रमण कर रानी को मार डाला। लेकिन राजा किसी तरह भाग निकला और उससे रूसी सैनिकों ने बचा लिया। जब कोरिया पर रूस का प्रभाव बढ़ने लगा, इस बढ़ती हुई प्रभाव से जापान काफ़ी भयभीत हो गया और उसने 1896 ईस्वी में रूस से संधि की, जिसके अनुसार कोरिया पर रूस का प्रभाव तथा जापान का अधिकार समान हो गया। लेकिन रूस इस स्थिति से संतुष्ट नहीं था। वह कोरिया की सेना तथा अर्थव्यवस्था पर अपना संपूर्ण नियंत्रण रखना चाहता था। फलस्वरूप कोरिया में रूस के विरुद्ध आंदोलन होने लगा और बाध्य होकर रूस को जापान से संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार जापान को कोरिया में व्यापारिक तथा औद्योगिक सुविधाएं प्राप्त हुई और इस तरह जापान का प्रभुत्व कोरिया पर पुनः स्थापित हो गया। लेकिन इस कांड ने दोनों के संबंध काफ़ी खराब कर दिए। तात्कालिक कारण। रूस जापान युद्ध का तात्कालिक कारण मंचूरिया में रेल लाइन खोलना तथा पूर्वी एशिया के लिए गवर्नर की नियुक्ति थी। रूस ने चीन से पहले ही आश्वासन ले लिया था कि रूस का मंचूरिया में विशेष आर्थिक हित है और ऐसी स्थिति में जब मंचूरिया से रूस अपनी सेना हटाने के लिए बहाना खोजने लगा, तब जापान के लिए युद्ध के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं रहा। 1904 ईस्वी के फरवरी में जापान ने रूस से अपने कूटनीतिक संबंध तोड़ लिए और इसके साथ ही रूस और जापान के बीच युद्ध की शुरुआत हो गई। 1904-5 ईस्वी का रूस जापानी युद्ध अधिक दिनों तक नहीं चला। रूस राजनीतिक दृष्टि से अकेला पड़ गया था और उसके सैनिक आधुनिक हथियारों से लैस नहीं थे। इसके साथ ही रूस की राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति इस युग के भार को वहन करने के लिए उपयुक्त नहीं थी। अतः विशाल रूस की सेना एक छोटे से एशियाई देश के हाथों पराजित हुई और इसके साथ ही रूस और जापान के बीच संधि हुई। इस रूसी जापानी युद्ध के अंत होने पर पोर्टसमाउथ की संधि हुई। इस संधि के अनुसार पहली शर्त थी कोरिया में जापान के प्रमुख राजनीतिक, सैनिक और आर्थिक हितों को मान्यता दी गई। मंचूरिया को रूस और जापान दोनों ने खाली करना स्वीकार कर लिया। रूस ने जापान को लियोतुंग प्रायद्वीप का पट्टा सौंप दिया और वहां की रेलों और खानों का अधिकार दे दिया। रूस ने जापान को शाखालिन द्वीप का आधा दक्षिणी भाग भी दे दिया। रूस ने जापान के इन द्वीपों से उत्तर और पश्चिम के समुद्र में जापान को मछली पकड़ने का हक भी दिया। रूस और जापान दोनों ने एक दूसरे को युद्धबंदियों का खर्चा देना मान लिया और इससे जापान को करीब 2 करोड़ डॉलर का लाभ हुआ। रूस और जापान दोनों को मंचूरिया में हथियारबंद रेलवे रक्षक रखने का हक मिला। रूस और जापान दोनों ने साखालिन को किलाबंदी ना करने और मंचूरिया की रेलवे को सैनिक काम में ना लाने की पाबंदी स्वीकार कर ली। रूस और जापान दोनों ने पट्टे की भूमि को छोड़कर मंचूरिया में चीनी प्रभुत्व का सम्मान करने का वचन दिया और वहां के द्वार सभी देशों के व्यापार और उद्योगों के लिए खुला रखने की तत्परता प्रकट की। रूस जापान युद्ध के परिणाम और उसके महत्व पर एक नज़र डाले। जापानी साम्राज्यवाद के विकास में रूस और जापान के युद्ध का बहुत महत्व है। जापानी साम्राज्यवाद के विकास में इस युद्ध के उपरांत काफ़ी तेजी से जापान आगे बढ़ा। इस युद्ध में जापान अपनी पूरी शक्ति से लड़ा था और यही कारण है कि वह विजयी हुआ था। इस विजय के उपरांत जापान की गणना संसार के महान शक्तिशाली राष्ट्रों में होने लगी। लेकिन युद्ध से जापान को जो लाभ प्राप्त हुए थे उससे वह संतुष्ट नहीं था। विजयी होने के बावजूद रूस से उसको कोई हार जाना नहीं मिला। जापान इस कारण बहुत क्षुब्ध था, लेकिन इसको लेकर वह बहुत दुखी भी नहीं था। वह जानता था कि उसको एक महान शक्ति का सामना करना पड़ा है और उनसे उन्होंने जमकर लोहा लिया है। जापान के उत्साह और सामरिक दक्षता के ज्ञान का प्रदर्शन संसार में हो चुका था। उसका सबसे घृणित दुश्मन हार कर अपमानित हो चुका था। रूस बिल्कुल इस युद्ध से पस्त हो गया था। वहां आंतरिक कलह उत्पन्न हो रहे थे और राजनीतिक क्रांति की तैयारियां भी हो रही थी। जापान अपने दुश्मन की दुर्दशा से बहुत खुश था। रूस की पराजय से जापानी साम्राज्यवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया। पूर्वी एशिया की राजनीति में वह एक कदम और आगे बढ़ गया। जापान किसी तरह चीन तक पहुंचना चाहता था। इसी उद्देश्य से 1894 ईस्वी में उसने चीन के साथ युद्ध किया था। उस युद्ध में उसको अपने उद्देश्य पूर्ति में पूरी सफलता मिली थी, लेकिन उस समय तीन राज्यों के हस्तक्षेप के कारण उसके सारे कार्य चौपट हो गए थे। रूस व जापान युद्ध में जापान की विजय से इस क्षति की पूर्ति हो गई। इस कारण जापान को चीनी क्षेत्र में घुस जाने का अच्छा अवसर मिला। जापान को इस युद्ध से इतने लाभ हुए थे जिसकी कल्पना उसने स्वयं भी नहीं की थी। इसके फलस्वरूप पूर्वी एशिया में रूस का विस्तार रुक गया। मंचूरिया पर उसका नाम मात्र का अधिकार रहा। युद्ध में जापान ने सिद्ध कर दिया कि वह संसार का एक शक्तिशाली राज्य है। इसी आधार पर उसने ब्रिटेन से अनुरोध किया कि आंग्ल जापानी संधि में कुछ इस प्रकार संशोधन किए जाएं जिससे जापान को अधिक लाभ हो। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि कोरिया पर से रूस के प्रभाव का अंत हो गया। अब जापान कोरिया में अपने इच्छा अनुसार काम कर सकता था। मौका पाकर 1910 ईस्वी में उसने कोरिया को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। इस प्रकार कोरिया को जापानी साम्राज्य में सम्मिलित करने के कार्य में रूस जापान युद्ध से जापान को बड़ी सहूलियत मिली। वस्तुतः जापान के लिए यह युद्ध जीवन मरण का प्रश्न था। यदि जापान इस युद्ध में हार जाता तो उसके सारे मंसूबों पर पानी फिर जाता, लेकिन वह विजयी रहा। समूचे संसार में विशेषकर पूर्वी एशिया में उसकी ख्याति बढ़ गई थी। जापान का उत्साह भी काफी बढ़ गया और इस युद्ध में विजय के उपरांत उसने उग्र साम्राज्यवादी जीवन को अपनाया, जिसके फलस्वरूप वह अपना विशाल साम्राज्य कायम करने में सफल हुआ। चीन पर प्रभाव। रूस जापान युद्ध का प्रभाव बहुत ही व्यापक था। चीन की राजनीति पर इसका दो तरह से प्रभाव पड़ा। चीन में जिस तरह साम्राज्यवादी राज्यों के बीच होड़ चल रही थी, उसको लेकर साम्राज्यवादी राज्यों में संघर्ष छिड़ जाने की पूरी संभावना हो गई थी। रूस जापान के युद्ध के कारण यह तथ्य स्पष्ट हो गया। साम्राज्यवादी राज ऐसे संघर्ष से बचना चाहते थे। वे चीन का शोषण परस्पर मिलजुल कर करना चाहते थे। अतः इसके लिए उन्होंने यह निर्णय किया कि चीन में खुले दरवाजे की नीति, जिसे आप ओपन डोर पॉलिसी भी कहते हैं, का सहारा लिया जाए। इस प्रकार रूस जापान युद्ध ने चीन में खुले दरवाजे की नीति को प्राप्त प्रोत्साहन दिया, जो स्क्रम्बल ऑफ कंसेशन, अधिकार की प्राप्ति के लिए सभी राष्ट्रों के प्रयास के नाम से भी जाना जाता है। रूस जापान युद्ध ने चीन में नवजागरण का भी सूत्रपात किया। फिर से ध्यान देंगे, रूस जापान युद्ध से चीन में नवजागरण का भी सूत्रपात हुआ। 1894 ईस्वी में चीन जापान युद्ध तथा उसके बाद चीन में प्रभाव क्षेत्र कायम करने की अंतर्राष्ट्रीय होड़ के प्रतिक्रिया स्वरूप चीन में बॉक्सर विद्रोह हुआ था। लेकिन 1904 और 5 ईस्वी के रूस जापान युद्ध ने 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। चीन के देशभक्तों के लिए रूस जापान युद्ध की गतिविधि एक बहुत बड़ी शिक्षा थी। इस युद्ध में एक विशाल देश को एक अत्यंत छोटे से देश ने हरा दिया था। यह इसलिए संभव हो सका था कि जापान ने समय की गति को पहचानकर अपना आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण किया था। इस हालात में चीन के लोग भी अपने देश को जापान की तरह उन्नत और शक्तिशाली राज्य बनाने की बात सोचने लगे। चीन के देशभक्त अपने देश में नवयुग लाना चाहते थे। इसके लिए चीन में एक आंदोलन का सूत्रपात हुआ और इस प्रकार 1911 ईस्वी की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हुई। मंचू राजवंश का अंत अब नजदीक आ गया। इसके साथ रूस पर रूस जापान युद्ध का प्रभाव। रूस जापान युद्ध का प्रभाव रूस की आंतरिक राजनीति पर भी पड़ा। उस समय रूस में जारशाही की स्वच्छता धारिता के खिलाफ आग सुलग रही थी। इसी बीच रूस और जापान का युद्ध हुआ जिसमें रूस हार गया। इसका कारण यह था कि इस युद्ध को रूस की जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था। उस समय रूस की जनता के समक्ष रोटी और राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण था। विशाल रूसी साम्राज्य में कुछ और प्रदेश शामिल हो जाए, इस बात में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। रूस में बहुत ऐसे लोग भी थे जो शत्रु देश जापान के प्रति भी सहानुभूति रखते, और जब वे रूस की पराजय का समाचार सुनते तो भीतर ही भीतर काफी प्रसन्न होते थे। जनता के समर्थन के अभाव में किसी युद्ध का जीतना असंभव होता है। इसके अतिरिक्त रूस की सरकार की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। उसके प्रायः सभी कर्मचारी बेईमान तथा भ्रष्ट थे। वे सेना को उचित सामान या हथियार नहीं पहुंचा सकते थे। रूस का राष्ट्रीय पतन इस हद तक पहुंच गया कि विदेशी युद्ध में उसका हारना अनिवार्य था। यह कारण है कि रूस इस युद्ध में हार गया। इस पराजय से स्वेच्छाधारी जारशाही की कमजोरी जनता के समक्ष प्रकट हो गई। जनता को स्वतंत्र होने का अच्छा अवसर प्राप्त हो गया और इसके साथ ही रूस में विद्रोह हो गया। विद्रोह का नारा था युद्ध समाप्त करो और एक तंत्र स्वेच्छाधारी शासन का विनाश हो। इस नारे से रूस का संपूर्ण समाज गूंज उठा। 1905 ईस्वी की रूसी क्रांति, रविवार 26 जनवरी का भीषण हत्याकांड, ड्यूमा की स्थापना रूस की वैध राज सत्ता को कायम करने का एक विफल प्रयत्न सभी रूस जापान युद्ध के परिणाम माने जा सकते हैं। युद्ध में पराजय ने रूस की आंतरिक राजनीति में बड़ा ही उथल फुथल कर दिया। एशियाई राष्ट्रीयता पर इस युद्ध का प्रभाव। रूस की पराजय और जापान की विजय से एशिया के लोगों में राष्ट्रीयता का अद्भुत संचार हुआ। फिर से ध्यान देंगे, इस रूस की पराजय और जापान की विजय से एशिया के लोगों में राष्ट्रीयता का अद्भुत संचार हुआ। 19वीं शताब्दी के प्रायः सभी देशों को पाश्चात्य राज्यों के साम्राज्यवाद का शिकार होना पड़ा था। एशिया और अमेरिका के गौरांग लोग ऐसा मानते थे कि प्रगति की दृष्टि से वो सर्वोत्कृष्ट हैं और एशिया के लोग उनकी अपेक्षा हीन हैं। एशिया के लोगों की भी मानसिक दशा कुछ ऐसी ही हो गई थी। पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव में आकर वे भी अपने को यूरोप वालों के मुकाबले हीन समझने लगे थे। लेकिन जापान की विजय ने इस भावना की जड़ को झकझोर कर रख दिया था। एशिया के लोग अब यह अनुभव करने लगे कि पाश्चात्य देशों की नवीन सभ्यता और संस्कृति को अपनाकर वे भी जापान की तरह पश्चिम का प्रतिरोध कर उससे बदला ले सकते हैं। आज तक एशिया के प्राधीन लोगों में यह विश्वास था कि पश्चिम की शक्ति अजेय है और विश्व की कोई शक्ति उसे हरा नहीं सकती है। लेकिन जापान की विजय ने इस अंधविश्वास को सदा सदा के लिए दूर कर दिया। यदि जापान यूरोप के ज्ञान विज्ञान और पाश्चात्य पद्धति को अपनाकर रूस जैसे शक्तिशाली और विशाल देश को हरा सकता है, तो एशिया के अन्य लोगों के लिए भी यह संभव है कि वे पाश्चात्य देशों की अधीनता से मुक्त होकर अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर सके। भारत आदि सभी एशियाई देशों पर जापान की इस विजय का असर हुआ और सर्वत्र जनता में राष्ट्रीय स्वतंत्रता को बल मिला। यूरोपीय कूटनीति पर प्रभाव। रूस की विदेश राजनीति यूरोप की कूटनीतिक स्तर पर भी इस युद्ध का काफी प्रभाव पड़ा। क्रीमिया युद्ध में हारने के बाद रूस पूर्वी एशिया में अपने विस्तार की योजना बना रहा था। इस योजना में उसको काफी सफलता भी मिल रही थी, लेकिन रूस की यह सफलता ब्रिटेन और जापान के लिए सिर दर्द बन रही थी। इसी कारण रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ। अतः इस क्षेत्र से वह अपना कूटनीतिक जाल बटोर कर निकट पूर्व तथा बाल्कन प्रायद्वीप में उसे फैलाने लगा। इसके फलस्वरूप 1905 ईस्वी के बाद रूस की साम्राज्यवादी कूटनीति बाल्कन प्रायद्वीप पर केंद्रित हो गई। यूरोपीय शांति के लिए यह बड़ी ही खतरनाक बात सिद्ध हुई। इस क्षेत्र में रूस के दोबारा आने से यहाँ की राजनीति बड़ी गंभीर हो गई और तरह तरह के अंतर्राष्ट्रीय संकट पैदा होने लगे, जिसे आप जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। इस दृष्टिकोण से यह कहना अनुचित नहीं होगा कि 1908 ईस्वी का बोस्निया कांड तथा 1912-13 ईस्वी के बाल्कन युद्ध रूस जापान युद्ध के यूरोपीय परिणाम थे। मंचूरिया पर प्रभुत्व की तैयारी। पोर्टस्माउथ की संधि के द्वारा मंचूरिया में 3 राज्यों का प्रवेश हुआ। चीनी सम्राट का वहां शासन था। रूस तथा जापान ने वहां अनेक प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त कर लिए थे। इस हालात में एक क्षेत्र में 3 प्रतिद्वंदी आ गए, लेकिन एक मयान में 3 तलवारों को रहना कठिन था। यही कारण है कि पोर्टस्माउथ द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था अधिक दिनों तक मंचूरिया में कायम नहीं रह सकी। शीघ्र ही वहां नए युद्धों का सूत्रपात हुआ और पोर्ट आर्थर पर कब्जा कर लेने के कारण जापान ने मंचूरिया में अपने पैर जमा लिए थे। उसका उपयोग कर उसने केवल मंचूरिया पर ही नहीं अपितु संपूर्ण उत्तरी चीन पर अपने प्रभुत्व की स्थापना का उद्योग आरंभ कर दिया था। ये रूस और जापान युद्ध के काफी व्यापक परिणाम थे, जिसने रूस की पराजय के साथ ही एशिया में जापान की सर्वश्रेष्ठता स्थापित कर दी और इसके साथ ही जापान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहली शक्ति बना, जिसके साथ ब्रिटेन ने 1903 ईस्वी में बराबरी के स्तर पर आंग्ल जापानी संधि की थी। कृपया ध्यान दें, जापान की और ब्रिटेन के बीच हुई संधि, जिसे आप आंग्ल जापानी संधि के नाम से जानते हैं, 1903 में नहीं 1902 ईस्वी में हुई थी।